अयोब अध्याय 41। क्या तुम लिव्याथन को मछली पकड़ने की अंकुड़ी से खींच सकोगे, अथवा क्या तुम उसकी जीभ को किसी डोर से बांध सकोगे? क्या उसकी नाक में रस्सी बांधना तुम्हारे लिए संभव है? अथवा क्या तुम अंकुड़ी के लिए उसके जबड़े में छेद कर सकते हो? क्या वह तुमसे कृपा की याचना करेगा? क्या वह तुमसे शालीनता पूर्वक विनय करेगा? क्या वह तुमसे वाचा स्थापित करेगा? क्या तुम उसे जीवन भर अपना दास बनाने का प्रयास करोगे? क्या तुम उसके साथ उसी रीति से खेल सकोगे जैसे किसी पक्षी से, अथवा उसे अपनी युवतियों के लिए बांधकर रख सकोगे? क्या व्यापारी उसके लिए विनिमय करना चाहेंगे? क्या व्यापारी अपने लिए परस्पर उसका विभाजन कर सकेंगे? क्या तुम उसकी खाल को बर्छी से बेध सकते हो, अथवा उसके सिर को भाले से नष्ट कर सकते हो? बस एक ही बार उस पर अपना हाथ रखकर देखो, दूसरी बार तुम्हें यह करने का साहस ना होगा। उसके साथ का संघर्ष तुम्हारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। व्यर्थ है तुम्हारी यह अपेक्षा कि तुम उसे अपने अधिकार में कर लोगे। तुम तो उसके सामने आते ही गिर जाओगे। कोई भी उसे उकसाने का ढाढ़स नहीं कर सकता, तब कौन करेगा उसका सामना? उस पर आक्रमण करने के बाद कौन सुरक्षित रह सकता है? आकाश के नीचे की हर एक वस्तु मेरी ही है। उसके अंगों का वर्णन ना करने के विषय में मैं चुप रहूंगा, ना ही उसकी बड़ी शक्ति तथा उसके सुंदर देह का। कौन उसके ब्राह आवरण को उतार सकता है? कौन इसके लिए साहस करेगा कि उसमें बागडोर डाल सके? कौन उसके मुख के द्वार खोलने में समर्थ होगा जो उसके भयाव्य दांतों से घिरा है? उसके पीठ पर ढाले पंक्तिबद्ध रूप से बिछी हुई है, और ये अत्यंत दृढ़तापूर्वक वहां लगी हुई है। वे इस रीति से एक दूसरे से सटी हुई है कि इनमें से वायु तक नहीं निकल सकती। वे सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक दूसरे को ऐसा जकड़ रखा है कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी छींक तो आग की लपटें प्रक्षेपित कर देती है, तथा उसके नेत्र उषा किरण समान दिखते हैं। उसके मुख से ज्वलंत मशाले प्रकट रहती, तथा इनके साथ चिंगारियां भी झड़ती रहती हैं। उसके नाक से धुआं उठता रहता है, मानो किसी उबलते पात्र से जो जलते हुए सरकंडों के ऊपर रखा हुआ है। उसकी श्वास कोयलों को प्रज्वलित कर देती, उसके मुख से अग्नि शिखा निकलती रहती है। उसके गर्दन में शक्ति का निवास है, तो उसके आगे आगे निराशा बढ़ती जाती है। उसकी मांसपेशियां उसकी देह पर अचल एवं दृढ़, और उसका हृदय तो पत्थर समान कठोर है, हां चक्की के निचले पार्ट के पत्थर समान। जब जब वह उठकर खड़ा होता है, शूरवीर भयभीत हो जाते हैं, उसके प्रहार के भय से वे पीछे हट जाते हैं। उस पर जिस किसी तलवार से प्रहार किया जाता है, वह प्रभावहीन रह जाती है। वैसे ही उस पर बर्छी, भाले तथा बाण भी। उसके सामने लोह भूसा समान होता है, तथा कांसा सड़ रहे लकड़ी के समान। बाण का भय उसे भगा नहीं सकता, गोफन प्रक्षेपित पत्थर तो उसके सामने काटी उपज के ठूठ प्रहार समान है। लाठी का प्रहार भी ठूठ के प्रहार समान होता है। वह तो बर्छी की ध्वनि सुन हंसने लगता है। उसके पेट पर जो झुरिया है, वह मिट्टी के टूटे ठिकरे समान है। कीचड़ पर चलते हुए वह ऐसा लगता है मानो वह अनाज कूटने का पट्टा समान चिन्ह छोड़ रहा है। उसके प्रभाव से महासागर जल ऐसा दिखता है मानो हांडी में उफान आ गया हो। तब सागर ऐसा हो जाता है मानो वह मरहम का पात्र हो। वह अपने पीछे एक चमकीली लकीर छोड़ता जाता है। यह दृश्य ऐसा हो जाता है मानो यह किसी वृद्ध का सिर है। पृथ्वी पर उसके जैसा कुछ भी नहीं है, एकमात्र निर्भीक रचना। उसके आकलन में सर्वोच्च रचनाएं भी नगण्य हैं। वह समस्त अहंकारियों का राजा है।